जम्मू कश्मीर में हो रही G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक में चीन शामिल नहीं हो रहा है। उसने यहां बैठक आयोजित किए जाने पर अपना विरोध जताया है, जिसके जवाब में भारत ने दो टूक कहा कि अपने क्षेत्र में बैठक करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा है जिसमें G20 देशों के 60 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। क्या है कश्मीर में G20 इवेंट की अहमियत और चीन के विरोध का क्या मतलब, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में साउथ एशिया मामलों के प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी। प्रोफेसर भारद्वाज, वैसे तो चीन का कोई प्रतिनिधि पिछले महीने सिलीगुड़ी में हुई G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक में भी नहीं आया था, पर कश्मीर की बैठक पर उसने शामिल होने से इनकार करने के साथ ही विरोध भी जता दिया है। कैसे देखा जाए उसके विरोध को, जिसका भारत ने दो टूक जवाब दिया है?
देखिए, अगर चीन की भूमिका देखते हैं तो चीन बहुत कुछ हद तक भारत के संदर्भ में और खासकर कश्मीर की बात आती है तो पाकिस्तान की नीति से प्रभावित है, लेकिन मोटे तौर पे देखने को मिलता है कि चीन के हमेशा दोहरे मापदंड होते हैं। चीन ने भारत के साथ एक तरीके से जो कूटनीतिक छल किया है वो 1950 से ही प्रकट होता है कि जब हमने भारत ने तिब्बत को चीन का इंटेग्रल पार्ट मान के उसको रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद हमने पंच सील साइन किया, उसके बाद उन्होंने 1962 में हमारे साथ दगा किया। दूसरी बात, हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक वन चाइना पॉलिसी होनी चाहिए और वो भारत जो वन भारत पॉलिसी है उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है। कश्मीर को अननेसेसरी अनावश्यक रूप से एक विवादित क्षेत्र चीन मान रहा है। कश्मीर भारत का इंटरगल पार्ट है, भारत का अपना भूभाग है और किसी भी तरीके से चाहे वो कानूनी रूप से देखें, राजनीतिक रूप से देखें, संवैधानिक रूप से देखें तो कश्मीर भारत का पहले दिन से ही एक इंटरगल पार्ट है, एक सोवरेन हिस्सा है और इसमें चीन को कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और चीन की दोहरी नीति यहाँ पे नजर आती है कि वो कह रहा है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एक विवादित क्षेत्र है, इसमें कोई सम्मेलन होगा हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन वही चीन जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लेकर वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो जब विवादित क्षेत्र है तो वो विवादित क्षेत्र में चीन इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि 1963 में जो पाकिस्तान और चीन के बीच जो समझौता हुआ उसमें चीन ने कश्मीर को पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूटेड लैंड माना है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे ला सकते हैं? तो चीन की जो 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 नीति है वो वो बायस्ड है और वो पाकिस्तान के नजरिए से भारत को और कश्मीर को देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि चीन अभी दुनिया में एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स कायम करना चाह रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के खिलाफ इस्लामिक वर्ल्ड में भी एक अपना वजूद बढ़ाए, प्रभाव बढ़ाए और एक अल्टरनेटिव इस्लामिक डिस्कोर्स क्रिएट किए। 1900 जब आप देखेंगे कि ये पहले से चला आ रहा, 2020 में चीन समर्थित एक इस्लामिक समिट हुआ था मलेशिया में, जिसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था, टर्की को किया गया था, ईरान को किया गया था और एक तरीके से एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स चीन क्रिएट करना चाहता था। अभी भी मुझे मनसा जो चीन की लगती है वो यही लगती है कि किसी भी तरीके से गलत इस्लामिक वर्ल्ड की गलत नीतियों को भी प्रमोट करके एक तरीके से एक धुरी बना के एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स क्रिएट किया जाए। और इसी कड़ी में आप देखिए ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में उन्होंने एक जो नेगोशिएशन का अपने नाम एक ठप्पा लगा लिया कि चीन ने उनके बीच नेगोशिएट करा दिया है, जो कि आप अगर देखेंगे बारीकियों से देखेंगे तो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में डिप्लोमेटिक और डायलॉग काफी समय से चल रहा था और वो दोनों देश एक दूसरे के साथ आने वाले थे, सिर्फ चीन बीजिंग एक 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 जगह उन्होंने तलाश की, तो उसमें तो इस तरीके का क्रेडिट लेना चीन को और अपनी क्रेडिबिलिटी दुनिया में, क्योंकि चीन की क्रेडिबिलिटी दुनिया में है नहीं। एक ऑथोरिटेरियन स्टेट है चीन, एक एक्सपेंशनिस्ट स्टेट है चीन, एक रिविजनिस्ट स्टेट है चीन, और चीन का हर पड़ोसी देश के साथ विवाद है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो वियतनाम के साथ, जापान के साथ, फिलीपींस के साथ, भारत के साथ, सभी देशों के साथ चीन का अपना एक विवाद है। तो इसमें चीन की एक क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब इस तरीके से रॉक स्टेट पाकिस्तान भी मैं कहूंगा कि एक अनडेमोक्रेटिक स्टेट रहा है, मिलिट्री का दबदबा हमेशा रहा है, तो इस तरीके के जो देश हैं जिनकी दुनिया में क्रेडिबिलिटी कमजोर है उनको साथ लेके अपना चीन प्रभाव बढ़ाना चाहता है। तो कश्मीर भी मैं ये कहूंगा कि ये जो कश्मीर का पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाना, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान और कश्मीर की एक जुगलबंदी है। और मुझे इसमें ये सबसे बड़ी बात जो इसमें देखना होगी, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को एक मौका है कश्मीर को देखने का, और लगभग सभी देश G20 के सभी देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर कश्मीर में इससे प्रॉस्पेरिटी आएगी, टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ेगी और कई तरीके की गतिविधियां भारत सरकार ने उसमें रखी है, जिसमें कश्मीर की जनता का जो इन्वॉल्वमेंट इसमें किया है डिफरेंट एक्टिविटीज में, वो कश्मीर की दुनिया में एक विजिबिलिटी कायम करेगा और भारत दिखाएगा कि कश्मीर में कितना विकास हो रहा है और कितना शांति और स्थायित्व है।
आपने कहा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इशारे पर चीन ये कर रहा है। हमने देखा कि तुर्की और सऊदी अरब ने भी बैठक के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, इसे कैसे देखा जाए? क्या इसके पीछे भी पाकिस्तानी एंगल आपको दिखता है, क्योंकि तुर्की कहीं ना कहीं कश्मीर का मसला हो तो पाकिस्तान का साथ देता आया है?
देखिए, तुर्की का जहां तक सवाल है, अभी तुर्की इलेक्शन के दौर में चल रहा है, जो तुर्की के राष्ट्रपति है उनको अभी पूरा समर्थन नहीं मिला है, तो मुझे लगता है वो एक ढुलमुल नीति में, वो अपने इंटरनल इश्यूज में बिजी है, इसलिए तुर्की ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा। सऊदी अरबिया का भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध है और पिछले कुछ वर्षों से भारत और सऊदी अरबिया दोनों ही आर्थिक पक्ष पे और अपने जो राजनीतिक पक्ष पे एक मजबूत कायम कर पाए हैं। मुझे लगता है कि होते होते सऊदी अरबिया भी निश्चित रूप से कश्मीर के मुद्दे पे सऊदी अरबिया का कोई अभी कोई किसी तरीके का रुख नहीं रहा, और पाकिस्तान के प्रति जो आइडियोलॉजिकल एक कनेक्शन था, जो एक सुरक्षात्मक कनेक्शन था, वो भी अब ढीला पड़ चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरबिया कहीं पर आज पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहा है, और मुझे लगता है कि इससे हम ये नहीं मान लेना चाहिए कि सऊदी अरबिया और भारत के बीच कश्मीर को लेके कोई ऐसा विषय है।
जी, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में ये पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हो रहा है, कितना अहम है G20 बैठक का वहां होना?
देखिए, ये भारत एक जो डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, जो एक इसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कि भारत एक लो अबाइडिंग कंट्री है और रूल बेस्ड सिस्टम में विश्वास करती है, और भारत में किसी भी तरीके का कोई भी, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात हो, चाहे डेमोक्रेटिक राइट्स की बात हो, या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो, वो कोई किसी तरीके का दबाव नहीं है भारत में। और ये सबसे बड़ा मौका है कि अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मेलन जो G20 के माध्यम से हो रहा है, और वो भी कश्मीर में हो रहा है, तो भारत को ये दुनिया को दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका है कि हम जितना डेमोक्रेटिक हैं, हमारी जितनी वॉइस डेमोक्रेटिक है, आप आइए देखिए। और एक सबसे बड़ी बात है कि 60 से ज्यादा प्रतिनिधि उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कश्मीर में जो एक टूरिज्म का एक बहुत बड़ा एक केंद्र है, एक स्थान है, जो भारत से भी टूरिस्ट आते हैं और दुनिया से भी टूरिस्ट आएंगे, जो एक धरती का स्वर्ग माना जाता है कश्मीर। तो मुझे लगता है कि G20 के सम्मेलन से, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से एक नए रास्ते कश्मीर की जनता के लिए खुलेंगे, आर्थिक विकास होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, और साथ ही जो कई तरीके की एक्टिविटीज जो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, वहां पे ऐसे कॉम्पिटिशन हो रहा है, बाकी कई तरीके के कॉम्पिटिशन इस सम्मेलन में रखे हैं, तो उससे कश्मीर की जनता और कश्मीर के जो एकेडमिक और इंस्टीट्यूशंस और स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होगा, तो एक बहुत बड़ा एक अवसर है भारत के लिए। और वो भारत ने साबित कर दिया कि हम कश्मीर में सम्मेलन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण सम्मेलन वहां पे संपन्न हो रहा है।
इस बीच बैठक को निशाना बनाने के आतंकियों के मंसूबे भी सामने आए हैं। मुंबई जैसा सिलसिलेवार हमला करने की साजिश का पता चलने के बाद G20 देशों के मेहमानों का गुलमर्ग का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इवेंट को निशाना बनाने की इन कोशिशों को?
देखिए, ये तो एक दूसरा एक अवसर है भारत के लिए कि आप ये देखिए कि किस तरीके से पड़ोसी मुल्क आतंकवाद और आतंकवादियों को समर्थन देके कि भारत के जो क्षेत्र है, संप्रभु भाग है भारत का, उसमें अशांति फैलाने का काम कर रहा है। भारत पिछले 3 दशक से आतंकवाद के साथ लड़ता रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज खासकर अमेरिका को भारत हमेशा बताता रहा है कि कश्मीर में आतंकवाद का जो जड़ है, जो 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 उसमें अलगाववादी ताकतों को जो समर्थन देता है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जो अमेरिका की चाहे वो आर्थिक प्रोग्राम हो चाहे वो सैनिक प्रोग्राम हो, उसका फायदा भारत के खिलाफ और आतंकवादियों को समर्थन देने के लिए उपयोग करता है। आप देखिए कि 9/11 हुआ, या आप ये देखिए कि तालिबान या आप ओसामा बिन लादेन और जिस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां अफगानिस्तान और पाकिस्तान में देखने को मिलती है, तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जुड़ाव देखने को मिलता है। ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही थे। और जिस तरीके का जो नेक्सस दुनिया को देखने को मिला कि पाकिस्तान अफगान तालिबान को भी एक तरीके से उनके साथ उनका सामंजस्य चल रहा था, तो ये एक एक्सपोज करने का एक भारत को एक एक्सपोज करने का एक मौका है कि पाकिस्तान इस तरीके की गतिविधियों में, आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहा है हमेशा और आज भी एक खतरा पड़ोसी देश में और दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए क्रिएट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को यहाँ एक्सपोज करने की जरूरत है और एक्सपोज हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी देख रही है कि इस तरीके के कार्यक्रम सुरक्षा को लेके, आतंकवादियों को लेके हमको सतर्कता बरतनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक भारत की एक तरीके से जीत है कि हम पाकिस्तान और आतंकवाद के मुखेटे को दुनिया के सामने रख पा रहे हैं।
G20 बैठक का कश्मीर में होना दुनिया के लिए एक बड़ा अवसर, धरती पर जन्नत कहे जाने वाली इस जगह को करीब से देखने का। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।